ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है अशरीरी स्थिति का महत्व, अनुभव कैसे करें, क्योंकि हमारे इस पढ़ाई का मुख्य सार है हमें कर्मातीत बनना है, बाप के समान बनना है और वापिस जाना है। इसके लिए बाबा ये शुरू से लेकर के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जितना भी पढ़ाई का विस्तार है ये विस्तार है अशरीरी बनने के लिए, चाहे चार सब्जेक्ट का विस्तार है, चाहे धारणाएं हैं, चाहे जो भी हम सेवा सब कुछ कर रहे हैं, चाहे ज्ञान सुन रहे हैं, ये सब अशरीरी बनने के लिए है। क्योंकि अशरीरी बिना बने हम देवता नहीं बन पाएंगे। देवता बनने के लिए हमारी स्थिति अशरीरी चाहिए, उससे पूर्व हमें फरिश्ता बनना है, कर्मयोगी बनना है। क्योंकि जब हम अशरीरी या देही अभिमानी बनते हैं हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाते हैं। हम प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए अलग अलग पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति अशरीरी स्थिति के तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम, कई बार कोई सामान लिया कुछ लिया प्रॉब्लम दब जाता है, फिर प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए मुख्य हमें ये मूल जो पुरुषार्थ है, मूल स्थिति है, क्योंकि इस मूल पुरुषार्थ से हमारे आत्मा के मूल संस्कार जागृत होते हैं। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो भी सात मुख्य गुण, इसे हम सत्व प्रधान भी बनते हैं। इतना ही नहीं, जितना इस स्वरूप में रहते हैं टिकते हैं उतना आत्मा को सच्चा सुख मिलता है और इस सुख से ही आत्मा की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। इस स्वरूप में टिकने से ही हमारे आत्मा के अंदर जो विकारों के जर्म से युगो युगो की वो खत्म हो जाते हैं। इस स्थिति में रहने से ही हम वायुमंडल को अच्छा बनाने की सेवा कर पाएंगे। इस अशरीरी स्थिति में रहने से ही हमारी आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, हम सब कुछ देख रहे हैं, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इस अशरीरी स्थिति से हम साक्षी बन सकेंगे। अशरीरी स्थिति से ही हमारे बोल में, दृष्टि में ताकत आएगी। जितना इस स्वरूप में टिकते हैं हम बाबा से जैसे कंबाइंड रहते हैं, बाबा से जुदा नहीं है। इतना ही नहीं, हमें अपने घर का ही अनुभव होता है, परमधाम में बैठे हैं, यहां रहते हुए भी कर्म योगी की अवस्था बनी रहेगी, कर्म योगी की स्थिति बनी रहेगी। जितना अशरीरी स्थिति में रहते हैं कर्म योगी रह सकते हैं। इतना ही नहीं, जितना इस अशरीरी के अनुभव में स्थित रहते हैं उतना किसी भी आत्माओं के अंदर की कमियां नजर नहीं आएगी, सब अच्छे नजर आएंगे। निगेटिव बातों को हम सहज ही पॉजिटिव में बदल सकेंगे। परिस्थितियां निगेटिव होगी तब भी तुरंत हम उसको पॉजिटिव बना सकेंगे। इस अवस्था में रहने से हमारे जीवन में शक्तियां और गुण सहज ही हमें मदद कर पाएंगे। हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सारे गुण भी आएंगे, शक्तियां भी आएंगी। इसलिए हर मुरली में बाबा खास इस पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चे अशरीर बनो, आत्माभिमानी बनो। बाबा ने भी, ब्रह्मा बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, उसी पुरुषार्थ से बाबा फरिश्ता बने। दादियां भी शुरू से लेकर के यही पुरुषार्थ करके इसी पुरुषार्थ से आज उन्होंने अपनी अवस्था बनाई। अवस्था बिगड़ती है देहभान में आने से। एक दिन ऐसे गुलजार दादी को पूछा था, दादी जी आप लोग अभी भी कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे, किस बात का अटेंशन रखते हैं? तो दादी ने कहा हम लोग ये अटेंशन रखते हैं, हमारे पास कोई भी आ जाए वो भी अशरीरी बन जाए, इसके लिए हम अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ। देखो 80-82 वर्षों से दादी अभी क्या कर रहे हैं, यही पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही असली हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा कहते ये अभ्यास बार बार करते रहो, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में बैठी हूँ, कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा भाई को देख रही हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो ये मेहनत नहीं करता उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या। ये एक निकालो दूसरी आएगी, वो निकालो तीसरी आएगी, वो निकालो। अगर एक आत्माभिमानी का ही पुरुषार्थ करेंगे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम का कारण है देहभान। जहां देहभान है ईर्ष्या है, घृणा है, नफरत है, ये तो विकारों के बाल बच्चे हैं। विकार तो अंदर पड़े हैं। फिर जैसे राम रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं दोबारा जुड़ जाते हैं। तो इतने में विभीषण आया, विभीषण ने राम के कान में एक बात बताई, ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी कई दिनों से रावण के गले काटते हैं, कभी काम का गला काटते हैं, कभी क्रोध का काटते हैं, कट तो जाते हैं, कुछ समय के बाद दोबारा जुड़ जाते हैं। फिर हमने सोचते कि यार इतना दिन मैंने इस संस्कार को छोड़ा, ये दोबारा कैसे आ गया, क्योंकि हमने देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाए, देह भान को खत्म नहीं किया। इसलिए बाबा कहते देह भान से मुक्त देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए। जैसे देह भान जैसे हमारा नेचुरल बना हुआ है, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए। सदा भ्रुकुटी में आत्मा चमकती रहे, यह अनुभव रहे कि मैं आज ऊपर से आया हूं, इस शरीर में बैठा हूं, फिर कर्म करके शाम को फिर वापिस जाना है, अप डाउन करता हूं। तो हर परिस्थिति में हम खुश रहेंगे, चेहरे में खुशी रहेगी, आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहेगी। इतना नहीं योग में बैठेंगे योग भी लगेगा, इतना ही नहीं इस स्थिति से ही हम इंद्रियों पर राज्य कर सकेंगे। आज इंद्रियां आत्मा पर शासन कर रहे, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति नहीं है। अगर आत्मिक स्थिति होती, अशरीरी स्थिति होती, तो आत्मा शासन करती, और जिसके जीवन में इंद्रिया शासन करते हैं उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए इंद्रियों को शासन करने की नहीं, लेकिन आत्मा का शासन इंद्रियों पर चाहिए। पानी के ऊपर से नौका चलती है, पार कराती है, नौका के अंदर अगर पानी आता है वो डुबा देता है। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो तैर जाता है, जिसको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसीलिए इस अवस्था में रह करके हमें सारा दिन का कारोबार करना है। इस स्थिति में रहने से जैसे एक तो कहां कर्मयोगी की स्थिति रहेगी, सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। इतने नहीं, आजकल बाबा का के साथ हमारा अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन अर्थात अशरीरी बनकर के बाबा के पास जाना, ऊपर मिल के आना। अशरीरी स्थिति नहीं तो अव्यक्त मिलन भी मना नहीं सकेंगे। इसलिए इस पुरुषार्थ के ऊपर मेहनत, जो ये मेहनत करता है बाकी सारी मेहनत उसकी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ये वैसे तो केवल ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन नहीं है, लेकिन 21 जन्मों का ये फाउंडेशन है। जितना इस आत्मिक स्थिति के फाउंडेशन को पक्का करते हैं, उतना हमारे जीवन की बिल्डिंग मजबूत रहेगी। 21 जन्मों की ब्राह्मण जीवन की भी रहेगी। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर फाउंडेशन को मेहनत नहीं किया, फटाफट बना करके ऊपर से दीवारें वगैरह सब वो अच्छा बनाया, एट्रैक्टिव बनाया, आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो गिर जाएगा। इसी तरह कभी कभी हम ब्राह्मण जीवन में फेल हो जाते हैं, संस्कारों में फेल हो जाते हैं, आपस के टकराव में भी फेल हो जाते हैं, प्रकृति के विघ्नों में फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? आत्मिक स्थिति अशरीरी स्थिति का अभ्यास नहीं है, इसीलिए फेल हो जाते हैं। इसीलिए अभी भी समय है ये पुरुषार्थ करना है। सहनशील बनने का नहीं पुरुषार्थ करना है। सहन शक्ति तो अशरीरी स्थिति का रिजल्ट है। जैसे बीज बोया फल अपने आप लगेंगे, इसी तरह जिन्होंने ये मेहनत किया अशरीरी बनने का, उसके जीवन में सारे गुण और शक्तियां दिखाई पड़ेंगे। अगर आत्मा अशरीरी का मेहनत नहीं किया, सहन नहीं होगा। इसलिए कई कहते मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, मुझे सहन करना सीखना है, उसके लिए क्या कर। सहन नहीं करने का पुरुषार्थ करना, लेकिन आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना, अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना। इसलिए इसके ऊपर हमें मेहनत करनी है। तो हम इस देह भान से मुक्त बनने के लिए क्या करें, जो हमारा देह भान कम होता रहे, हमारे शरीर में हमारी आत्मा की लाइट सदा जलती रहे। और जितना आत्मा की लाइट हमारी जलती है, जितना हो रहा है, उतना हम उतने एरिया की सेवा कर सकते हैं, वाइब्रेशन फैला करके। इस स्थिति को बनाने के लिए वैसे तो बाबा ने अभी भी जो लेटेस्ट मुरली चलाई, बाबा ने कहा कि एक शब्द बाप को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाबा ने कहा था वो शब्द, वैसे तो कारण वाला शब्द इस सीजन में 3 बार मुरलियों में बाबा ने कहा हुआ है। एक कारण शब्द देह भान में लाता है, कारण इसके कारण ऐसा हुआ, ये परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। क्योंकि जहां कारण है वहां निगेटिव विचार है, और जहां निगेटिव विचार है हमारी शक्तियां वेस्ट जा रहे हैं। चाहे पवित्रता की शक्ति जा रहे हैं, मनसा के द्वारा शक्तियां जा रहे हैं। इसलिए कारण का क्या करो, निवारण, समस्याओं का समाधान। क्योंकि इस सीजन के जो मुरलियां चल रहे हैं, जैसे परीक्षा के अंतिम समय में टीचर स्कूल में आकर के लेसन नहीं लेता, पढ़ाता नहीं है, लेकिन क्या करता है, जो भी कुछ इम्पोर्टेंस पूरा पढ़ाया, जो सिलेबस उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको क्या करता है, अंडरलाइन कराता है। इसी तरह बाबा की मुरलियां रिवाइज हो रहे हैं, तो बाबा देख रहे हैं कि वर्तमान समय आज हमारे जीवन में हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बन रही, देह बांध से मुक्त नहीं हो रहे, उसका ये कारण शब्द। इसलिए कारण का क्या करना है, निवारण, समस्याओं का समाधान। जहां कारण आता है वहां संकल्प व्यस्त जाते हैं। वास्तव में आत्मिक स्थिति अशरीरी स्थिति बनाने का एक मूल मंत्र है, संकल्प को बचाओ। हमारा मन सदा चुप रहे, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ये ऐसा होना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, करेक्शन करना ये भी व्यर्थ है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, वो करता इसलिए मैंने किया कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है उसकी शक्तियां बसती है, और उसी शक्ति का नाम है आत्मा, ऊर्जा। ये हमारी, हम शुद्ध भोजन खा रहे हैं, अमृत वाला योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं है, आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं है। इस सारा दिन के कारण, एक कारण क्या करते हैं, भाई मुक्ता में लाते हैं। इसलिए कोई कारण नहीं है, और जब कारण का निवारण करेंगे मन हमारा चुप रहेगा, और जिसका मन चुप रहता है वो सहज ही अपनी शक्तियों को क्या करता है, बचा सकता है। और जितना हमारी शक्तियां बचेगी उतना हम अपने स्वधर्म में टिक सकेंगे, आत्मा अपने आसन पर टिक सकती। जब मन में और बुद्धि में, मन में क्वेश्चन चलते हैं, आत्मा वहां टिक नहीं सकती, ब्रुकुटी में वो आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसलिए कोई कारण नहीं, तो कारण का निवारण हमें कैसे करना है। वास्तव में हमारे जीवन में जो भी कुछ कारण आते हैं ऐसे नहीं आते। आज कोई आपके जीवन में विघ्न डालता है, कोई समस्या निर्माण करता है, ये सब क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए, दो हाथ चाहिए। इसी तरह आज हमारे जीवन में जो जो कुछ हो रहे हैं ये हमारे कुछ पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। और इसीलिए बाबा ने सब कुछ बताया कि बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब चुकते हो रहे हैं। तो भी हम कहते हैं ये क्यों हुआ, ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया। जैसे परीक्षा में कोई क्वेश्चन आता है वो लिखने के बजाय आप कहेंगे ये क्यों डाला था, किसी लिए डाला था, यही करते रहेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट जाएगा। इसलिए जो जो कुछ आता है बिना कारण नहीं आया, इसलिए उसका समाधान, मेरा कोई ना कोई हिसाब किताब। अगर कारण है आपके जीवन में, इसका मतलब मैंने नॉलेज को, ज्ञान को समझा ही नहीं है, अभी तक ज्ञान को समझा ही नहीं है, ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, इसलिए क्वेश्चन उठ रहे हैं। और जो क्वेश्चन है संकल्प निगेटिव है, और जब संकल्प निगेटिव है देह भान है, आत्मिक स्थिति नहीं है। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं है। कारण का क्या करो, निवारण। अगर कारण निगेटिव है उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करो। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। इसलिए इस वर्ष में हमें इस विधेयी स्थिति का, क्योंकि बाबा ने बीच में भी एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन पाएंगे। चलो दो मिनट। बात चल रही थी, वास्तव में आज अशरीरी की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती, तो सारा दिन हम क्वेश्चन करते रहते, ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। श्री बाबा कहते कारणों का निवारण करो, तो कारणों का निवारण करने से हम हल्के बनेंगे। जितना मन हमारा क्वेश्चन करना बंद करता है, मन चुप रहता है, क्योंकि मन के निगेटिव विचार बुद्धि को भी ढक देते हैं, मैला करती हैं, क्योंकि बुद्धि एक आईना है। जितना ये बुद्धि का आईना स्वच्छ होगा उतना परमधाम बाबा नजर आएगा। अगर बुद्धि में वेरस, मन के वेरस संकल्प चलते हैं तो बुद्धि अस्वच्छ बनती है। जितना मन में पॉजिटिव विचार, समर्थ विचार चलते हैं, उतना बुद्धि सोचे, और जितनी बुद्धि सोचे हैं, मन हल्का है, उतना हम बाबा से कनेक्ट है, कर्म योगी है। और जितना कर्म योगी बनते हैं, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, चार्जिंग होता रहेगा। हम रात को सोए हैं तो भी चार्जिंग चालू है, कर्म कर रहे तो भी चार्जिंग चालू है, लाइट आती जा रहे। इसलिए कारणों का निवारण बाबा ने इसलिए कहा, ताकि कर्म योगी बनते रहे, बैठ करके भी योग लगा रहे। कई बैठे योग में तो भी वो कारणों के बारे में सोच रही है, क्यों हुआ, इसने क्यों बोला, ऐसे कैसे हुआ, तो शरीर कैसे बनेंगे। इसलिए कारणों का निवारण करना है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है, जैसे कहा, कार्मिक अकाउंट को याद रखना है, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर न जाने कभी राजा बने होंगे, कभी किसी के साथ अन्याय किया होगा, किसी की बात सुन करके, तो छुटेगा थोड़ी। तो इसीलिए यहाँ ब्राह्मण, और यह तो सबका अंतिम जन्म है, हमने जो भी कुछ दोपहर इच्छे लेकर के जो कुछ किया है, सब यहीं चुप्त करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ के हिसाब है, प्रकृति ने तो सत्युग में इतना अच्छा शरीर दिया था, इसीलिए आंखें देती अच्छा देखने के लिए, कान दिया था अच्छी सुनने के लिए, प्रकृति ने इतना अच्छा शरीर दिया, सत्युग में कितना अच्छा भोजन दिया। सत्युग तो क्या, सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग अभी भी दे रहे हैं, लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया है, हमने आंखों का दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया, इसीलिए प्रकृति को अंदर से चिढ़ है, इसीलिए प्रकृति के विघ्न आ रहे हैं, कोई बीमारी के रूप में, ये मैंने प्रकृति का दुरुपयोग किया इसीलिए आ रहे हैं। इसीलिए अब हमें प्रकृति को क्षमा मांग करके, अब दोबारा हमें ऐसा नहीं करना है, और दोबारा अब हम एक क्षमा लेने के बाद अब प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है, करेंगे तो विघ्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। आज कोई आपसी संबंधों में कोई प्रॉब्लम है, ये भी हमारा कोई ना कोई, कोई किसी का पिछले जन्म में कभी तंग किया होगा, पड़ोसी बन करके, ऑफिस में रह करके, तो इसीलिए हमारे कार्मिक अकाउंट है। और जिन्होंने इस कर्म गति के गहराई को समझ लिया, वो कभी भी कारण नहीं लगाएगा, ये क्यों होता है, मेरे साथ क्यों होता है। तो एक तो कार्मिक अकाउंट, दूसरा अगर हमें कारण का निवारण करना है, मेरे जीवन की हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में कल्याण है, क्योंकि समस्या व्यक्ति को वैरागी बनाती है, उपराम बनाती है। आज तक आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आई, किसी ने ट्रांसफर किया होगा कहीं, किसी ने विघ्न डाले होंगे, इससे तो आप समस्या से दुखी बने, परेशान किए हुए, फिर भक्ति करने के लिए मंदिर में गए, गुरु किया, भक्ति की, करते करते धीरे धीरे ज्ञान मिला, तो समस्या से क्या हुआ, अच्छा हुआ है बुरा हुआ, अच्छा ही हुआ ना। अगर वो समस्या ना आती तो यहाँ कैसे आती। इसीलिए बाबा कहते हैं, आजकल की, आज तक जो समस्या आई वो भी अच्छी थी, और अभी भी कोई समस्या आ रही, वो भी आपको उपराम वैरागी बनाने के लिए आ रहे। इसीलिए ड्रामा बाबा ने आपका कल्याणकारी बनाया, परिस्थितियां कल्याणकारी बनाया, इसीलिए सोचने की जरूरत नहीं, मेरा क्या होगा और कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा ही होगा। और इसको भूलने के कारण कभी हम अपने संकल्प को व्यर्थ करते हैं, क्यों, क्या, कैसे। और जो संकल्प व्यर्थ किया, जितना दिमाग में ज्यादा विचार करते हैं, सोचते हैं, उतना देह भान आता है। जितने हमारे संकल्प को, इस ज्ञान को यूज करके संकल्प को जितना कम चलाते हैं, उतना हम लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। और जो हल्का रहता है वो कैसा है, वो है फरिश्ता, वो अशरीरी है। इसलिए संकल्प की बचत जरूरी है। एक शिष्य गुरुजी के पास गया तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव, क्या बात है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है, 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था और कहा कि बगीचे में 3-4 युवा आए थे, उनको बहुत प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा वो सामने कुआं है वहां जाकर के पानी पी के जाऊं, वहां बाल्टी है रस्सा है, तो 5-6 युवा वहां गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला, उसने पानी मिला ही नहीं, फिर दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार छोड़ के चले गए, कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थे, वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह गुरुजी ने कहा तुम बहुत भक्ति करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे मन को छेद है, वेरा सोचने की आदत है। इसी तरह हम ज्ञान में चल रहे हैं, वो तो एक कुएं के पास गया था, हम कहां गए हैं? हम तो सागर के पास आए हैं, बाबा सागर है शांति का, शक्ति का, आनंद का, हमारे पास बाल्टी भी है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, मेहनत भी कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, अमृत वाला उठ रहे हैं, लेकिन अगर वेरस सोचने की आदत है अशरीरी का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, मन को व्यर्थों से बचाओ, और जितना जिसने मन को व्यर्थों से बचाया उसकी वो लाइट माइट का अनुभव, अशरीरी का अनुभव, शांति का अनुभव कर सकता है। तो कई कहते हैं हम तो इतना दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, पता नहीं कोई अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब व्यर्थ सोचने की आदत है, तो व्यर्थ सोचना बंद, सारे बोझ बाबा को दे दो, कारण का निवारण करो, कोई कारण के बारे में सोचो ही नहीं, सोचेंगे देन राई होता है उसका पहाड़ बन जाएगा, फिर सोच करके बड़ा बनता है। इसलिए अशरीरी स्थिति बनाने का मूल मंत्र है वेरस संकल्प से मुक्त बनना, और उसके लिए कर्मों की गुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, बहुत सारी बाबा ने कितनी सारी विस्तार में मुरलियों में बताया, इसके लिए ज्ञान को प्रयोग में लाना। दूसरी बात है, अगर अशरीरिक अनुभव करना है, जब जब हम योग करते हैं, एक तो हमें अशरीरी स्थिति बनाने का आधार है योग, चाहे बैठ करके योग चाहे कर्म योग, दोनों में भी हमें, वैसे तो बाबा कहते योग हमारा नेचुरल रहे, कर्मों में भी रहे, बैठ करके भी रहे, और खास तो सवेरे जब हम बैठते हैं अमृत वाला, उसी समय हमें क्या करना है, उसको विधि से करना है, विधि अर्थात उठ करके बैठना, आंखें खोल करके बैठना, अच्छे अच्छे विचारों में रमन होना, और जितना अमृत वाला हम करते हैं अच्छी, तो अशरीरी बनते हैं। जैसे ट्रेन स्टेशन से जब चलाते हैं थोड़ा मेहनत लगती है, एक बार स्टार्ट हो गई सारा दिन वो आगे दौड़ती रहेगी, केवल पटरी पर रखते हैं उसको। इसी तरह जिसने अमृत वाला थोड़ी मेहनत की, उसकी सारा दिन पुरुषार्थ रूपी ट्रेन दौड़ेगी। अमृत वाला मेहनत नहीं की, कई तो उठ तो जाते हैं, उठ करके बाबा कहते नेमिनाथ होकर के बैठते हैं, उठ जाएंगे अमृत वाला, उठ करके बैठेंगे, दीवार के सहारे बैठे हैं, मुंह खुला है, आंखें बंद है। अब जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाऊं, भाई आप आ जाओ हमारे घर में, जरूरी कुछ काम है, बात करनी है, अब बुलाने के बाद फिर बाद में जब वो मेहमान घर के सामने आया, आने से पहले दरवाजा खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, गेट बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसे लगेगा? इसी तरह हम भी अमृतलोक उठेंगे, उठ करके बाबा कहेंगे मीठे बाबा प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है करनी है करनी है करनी। आंखें बंद, अब बाबा को तो निमंत्रण दिया, अब वो मेहमान को फिर बाद में वो चला जाएगा, वो देखेगा रे तो मुझे बुला रहे, वो तो दरवाजे खिड़की बंद है, फिर बाद में जाने के बाद फिर फोन करो कि आप आ जाओ जरूरी काम है, वो कहेगा मैं आया था आपने दरवाजे बंद किया था मैं यार, कहते नहीं नहीं प्लीज फिर आ जाओ, फिर आया फिर दरवाजा बंद है, दोबारा फोन करेगी तो क्या बोलेगा, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मैं आता हूं तो आप तो दरवाजा बंद रखते, इसलिए आंखें खोल करके बैठना, क्योंकि हम आंखों से बात ही नहीं करते कभी, आंखें बराबर योग की शक्ति जब लेते हैं तो बंद हो जाते हैं, मतलब आंखें क्या करते हैं, अब उस समय कोई मोबाइल व्हाट्सएप देख के बंद थोड़ी होंगी, उस समय तो बुरा देखने के लिए आंखें सहयोग देते हैं और अच्छा देखने के लिए बंद हो जाते हैं, ये क्या इसका मतलब, बाबा कहते हैं एक एक इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ, उनको भी इंटरेस्ट चाहिए, तो ये धोखा दे रहे हैं, कान धोखा दे रहे हैं, इसलिए और केवल उठ करके बैठना नहीं, लेकिन बैठ करके क्या करो, अब कोई मेहमान घर में बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे बुलाए क्यों बताओ, अब इसी तरह कई क्या करेंगे बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे झूमते रहेंगे, बस कोई बात ही नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करो, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा हम क्या थे कैसे बन, जब जितना ये बाबा के साथ ऐसी बातें करेंगे अंदर से वो प्यार उत्पन्न होगा और उस प्यार के अंदर हम लगन में मगन हो जाएंगे, बेहोश में नहीं बैठना, ये तो कई बार अमृत वाला सवेरे डायमंड हॉल में कई भाई बहने आते हैं, आकर के योग करेंगे, योग करते 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 ऐसा सो जाएंगे, योग करके सारा उठ के चले गए, उसका योग ही लगा पड़ा, लोग नहा धो करके दोबारा है तो भी योग लगा रहे, अगर उसको उठाओ तो कहता है और 10 मिनट का योग करके फिर जाऊंगा मैं, वो योग थोड़ी है, अगर ऐसा योग करेंगे तो चार्जिंग कैसे होंगे, वो अशरीरी स्थिति कैसी बनेगी, इसलिए होश में बैठना, बिल्कुल आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी आंख खोल करके, तो जितना हम योग के पर, और जो बाबा ने बैठक के लिए टाइम दिए हैं, कई कहते नहीं हमारा तो कर्म ही हो गए ना, बैठने के लिए टाइम ही, बैठ करके भी करना है, जो मुकरर किए टाइम है, अमृत वेला मुकरर किया है, क्लास के पहले भी बाबा ने सिस्टम बनाया, आधा घंटे पहले योग करो फिर मुरली सुनो, लेकिन हम क्या करते हैं सीधा आएंगे, कई सेंटर में हम जब जाते देखते हैं कि 7 बजे मुरली चलती है, 6:30 कोई नहीं है, 7:45 तक भी कोई नहीं है, 7:05 कम आए तो आते रहेंगे, फिर 7 बजे तक क्लास फुल हो गई, एक्चुअली क्लास फुल होनी चाहिए कब 6:30 ही, अब उसके लिए हम कोई कारण लगाते हैं क्या, बच्चे स्कूल में जाते हैं फिर थोड़ा ये होता है वो होता है, तो वो योग का पीरियड आपका मिस हुआ, अब योग ही नहीं करेंगे तो मुरली से नशा कैसी चढ़ेगी, इसीलिए सवेरे सवेरे अगर अशरीरी स्थिति बनानी है, सवेरे सवेरे एक अमृत वेला, क्लास के पहले योग और मुरली, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुरली के लिए भी आजकल कई क्या करते हैं, वो पढ़ेंगे कई मोबाइल में पढ़ेंगे कई व्हाट्सएप में पढ़ेंगे, काम चलाओ नहीं, लेकिन उसको विधि से वो योग करके फिर संगठन में आकर के पढ़ो तो उसमें आनंद आएगा, तो ये 3 चीजें हमें अशरीरी बनाने का साधन है, और साथ में सारा दिन भी कर्म योगी, और रात को सोने के पहले भी थोड़ा सा योग करके, नुमा शाम का योग करना, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल है अगर चलो नहीं खड़े भी रहते तो भी अंदर से योग, कई घर से बाहर निकलते हैं, कई बीच बीच में सप्ताह में महीने में कभी भट्टी होती है उसमें भी शामिल होना, ये सब चीजें हमें आत्मा की बैटरी को चार्ज कराते, इसलिए अशरीरी बनने के लिए योग के ऊपर अटेंशन, कर्म योगी स्थिति। अगर कर्म में योग नहीं करेंगे, कर्म में ही मस्त हो जाएंगे, तो कर्मों में ऊंचा नीचा जो होता है वो योग के समय याद आएगा, तो बैठ करके योग अच्छा नहीं लगेगा। फिर बुद्धि बार 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 भटकेगी। नहीं तो भक्ति मार्ग में यही किया ना, माला जप रहे, राम राम राम, देखना भाई बिल्ली दूधना, राम राम राम। अब यहां भी बैठे हैं, योग लगा रहे हैं, तो अचानक थाली का आवाज आए, कहेंगे बेटा तुमने क्या लिया, थोड़ा ध्यान से लेना। ध्यान कोई हम देखे, कई भाई भाई बहने बाबा के कमरे में जाएंगे, बैठेंगे, योग लगा रहे हैं, तो बार बार देखेंगे अपना ग्रुप उठा तो नहीं है, मैं पीछे मुड़ के देख योग कहां लग रहा है, वो कैसे अनुभव करेंगे। अब कई उनको बैठे योग में, फिर सोचेंगे चलो तो कल तो जाने का दिन है, थोड़ा स्टोर है बाबा का जो दुकान है वहां जाकर के थोड़ा स्टिकर वगैरह कुछ लेंगे, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर सोचेंगे बाहर जाकर थोड़ा खरीदारी भी करेंगे, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर सोचे इतना पैसा तो है ही नहीं, चलो दीदी से उधार ले लेंगे, मैं आत्मा हूँ शांत। बैठे योग में बाबा से बात करे और सारा वो कारोबार चल रहा है, तो ऐसे योग करने से कैसे चार्जिंग होंगे। इसीलिए जब योग में बैठे हैं, बाबा से अच्छी तरह फ्रीडम होकर के बातें करो, और तब हमारे अंदर शक्ति आएगी, अशरीरी का अनुभव होगा। तो योग में हमें, और रास्ते में भी जब चलते फिरते मस्त होकर के बाबा से कंबाइंड होकर के रहो, कर्म योगी बन करके रहो, योग के ऊपर अटेंशन। तीसरी बात आई, पहला बताया कारण का क्या करो, निवारण, समस्या का समाधान। दूसरी बात बताई योग के ऊपर अटेंशन, विधि पूर्वक योग, चाहे कर्म योग भी विधि पूर्वक। तीसरी बात आई, अगर हमें अशरीरी का अनुभव करना है तो कोई भी प्रकार का जो अभिमान है, चाहे विशेषता का अभिमान, चाहे गुणों का अभिमान, ये अभिमान कभी भी हमें हमारे अंदर ना आए। अगर अभिमान आया, क्योंकि अशरीरी वही रह सकता है या आत्मिक स्थिति में वही रह सकता है जिसको कोई अभिमान नहीं है। मैं दो प्रकार के, एक असली मैं, दूसरे नकली मैं। नकली मैं तो बहुत है, अगर इस बात का भान होगा असली मैं दब जाएगा, इसीलिए मैं आत्मा हूं। नहीं तो कई बार बाबा कहते मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई चीज का क्या हुआ, अभिमान आया। क्योंकि जैसे इस ज्ञान मार्ग में आगे चलेंगे, बाबा ने कहा ना साधन बढ़ेंगे, प्रशंसा होगी, सब कुछ आएगा, लेकिन सब में रहते हुए भी अभिमान से मुक्त। ये सब आज हमारी जो महत्व है बाबा के कारण, ये वास्तव में कला विशेषता ये जो भी दिए हैं, किसने दिए हैं, ये बाबा ने हमारा भाग्य बनाने के लिए दिए, हमारा कुछ भी नहीं है, अपना भाग्य बनाने के लिए बाबा ने दिए हैं। इसीलिए उस कॉन्शियस में नहीं रहना है, आत्म कॉन्शियस में रहना है। मैं तो मैं अपने खुद के जीवन के अनुभव के आधार से मैं देखता हूं। अगर मेरी अपनी लाइफ स्टोरी अगर आपको सुनाऊं, मैं कहां गांव में, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में रहता था, वो भी बकरी चराने वाले परिवार में रहता था। मैं तो 11 साल लौकिक स्कूल पढ़ाई भी किया नहीं था, 11, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे। तो 11 साल के बाद क्या किया, हमारे गांव था 1 घंटा दूर जितना, खेती से वहां स्कूल में गया। और उसी जमाने में एक रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, पहली के 2-3, दूसरी के 2-3। तो वहां जब गया तो टीचर को कहा, सर मुझे पढ़ना है, तो कहा कि तुम तो अभी 11 साल की उम्र कितना है, तो हमने कहा इसे, तो कहा कि अभी थोड़ी पढ़ेंगे आप, हमने कहा नहीं सर मुझे हमारे माँ बाप को पता नहीं और मुझे पढ़ने की लगन है। तो जब देखा इनको लगन है तो कहा कि ठीक है कल से आओ, और पहले दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठा दिया और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरों को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने कहा कि आप रोज कहाँ जाते हैं? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना, मना किया। हमने कहा पैसे नहीं मांगे कि ऐसे पढ़ूंगा। तो कहा कि ठीक है ऐसे जाना तो भले जाओ। तो एक साल के बाद छठवीं में, फिर सातवीं में, तो सातवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। मना किया। मैं सोचा अब क्या करें। तो मैं क्या करता था, रद्दी की पुरानी डायरी लाता था, लिखे हुए पन्ने पहले स्याही से लिखा रहता था, तो उसको पानी से धुलाई करता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था, ऐसी करके पढ़ाई की। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला और उस किताब से बाबा के ज्ञान में आए। लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तो दो साल तक ऐसे ही मैंने उस किताब को पढ़ करके कुछ और किताबें मंगवाई। मंगवाने के लिए मैंने 6 महीने तक क्या किया, वो पानी बेचा और पानी बेच करके 10 रुपए इकट्ठा किया और उसे उस किताब को पढ़ करके योग लगाते थे। 10वीं में अच्छा बोर्ड में पहला नंबर आया। 10वीं के बाद फिर कोर्स करने के लिए एक बड़े शहर में गए थे, वहीं गीता पाठशाला थी, वहां जाना शुरू किया। जब गीता पाठशाला में जाते थे तो वहां 2-4 भाई बहने आते थे, मैं भी आकर के बैठता था। कभी बहने गुरुवार के दिन आते थे तो मैं उस समय फटा हुआ कुर्ता था, पीछे बैठता था। तो कहते थे बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, देखो ये पढ़ता भी है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएंगे, क्योंकि मैं तो ना शब्द सुना सकता था, ज्ञान किसी को गांव से आया था, तो एकदम डरा सा बैठा रहता था। लेकिन जिस दिन मैं गीता भाषा में गया था उसी दिन एक मुरली चली थी। बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी से तीव्र पुरुषार्थ बनेगा ऐसे। तो मैंने क्या किया, उसी दिन मैं अपने गांव में एक दुकान था, उसी में हाथ पर लिखते थे, उसी दिन मैंने अपने हाथ पर लिख कर लग दिया मैं आत्मा हूँ। फिर मैंने एक एक घंटे में उसका चार्ट लिखना शुरू किया, आत्मा हूँ। तो मैंने पुरुषार्थ में ये शुरू शुरू में बहुत ही इसका मेहनत की और ये मेहनत करते करते धीरे धीरे आज देखो बाबा ने कहाँ पहुंचाया। कभी मैं जब ज्ञान में चलने से पहले पुलिस वालों को देखता था डर जाता था, लेकिन आज इतना सारा जेलों में जाकर के 8-9 हजार 900 जितना जेल में, 9000 जितना स्कूलों में, तो ये आत्मा का लेसन पक्का किया। और वास्तव में ये हमारी, मैं जब आया था शुरू में मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। मैं जब दिल्ली में सेंटर में गया था मुझे हिंदी नहीं आती थी, वो वहां के भाई ने मुझे बगीचे में छोड़ दिया, कहा कि पता नहीं दादिया कौन सी भाई लोगों को भेजती है। तो मैं हिंदी वहां सीखने की प्रैक्टिस की और करते करते आज इतना सारा स्कूलों में सेवा करके इतना रिकॉर्ड बना दिया। ये बाबा ने वास्तव में मेरा भाग्य बनाने के लिए दीवी कला है, मेरा कुछ ही नहीं है। नहीं तो इतना उमंग, इतना सर्दी में, गर्मी में, जहां कोई भाषा भी नहीं आती वहां पहुंच जाते। अभी तमिलनाडु गए थे, कहा नेपाल के पहाड़ियों में कोने कोने में जाकर के सेवाई की। तो ये उमंग बाबा वास्तव में हमारा। अब मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छे लेक्चर करना जानता हूं, मैं इतना हमारा नहीं है, लेकिन किसका है? तो इसलिए जितना हम निरहंकारी रहते हैं उतना कोई अपमान करे, मान दे, सम्मान दे, उसमें समान स्थिति रहेगी। अगर अभिमान आया सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए निरहंकारी स्थिति से ही आत्मिक स्थिति बनेगी। अगर कोई भी प्रकार का विशेषता का अभिमान है, कला का अभिमान है, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आत्मा अभिमानी बनने के लिए अभिमान से मुक्त। अब जैसे कई सेंटरों पर जाते हैं, बहुत सारा सम्मान होता है, ये हमारा नहीं होता, किसका होता है? हमारे मधुबन निवासी हैं, हम बाबा के समर्पित बच्चे हैं, हमारे पास समर्पित का बैच है, उसको देख करके लोग सम्मान करते हैं, हमारा नहीं। जैसे कहते एक व्यक्ति ने गधा पाला था, अब जब गधा पाला था उसको लगता है कि अभी उसका एक नया मकान बना था, तो सारा सामान शिफ्ट करना था। अब सोचा कि इतना सारा सामान मैं कैसे लेके जाऊं, तो सोचा चलो गधे के ऊपर रख करके सारा सामान शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बची थी। अब सोचा इतना मूर्ति कैसे लेके जाऊं, लास्ट में उसको आइडिया ही चलो इसके ऊपर बिठा कर लेके जाते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, उसीलिए कपड़ा ढक दिया उसके ऊपर, पूरा कपड़ा ढक करके लेके जाने लगा। चलते चलते क्या हो गया, वो कपड़ा थोड़ा सा गधा चलने के कारण वो ऊपर से निकल गया, मूर्ति का शीर दिखने लगा। मूर्ति का शरीर देखने लगा, लोग उसको देखते ही नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है मुझे ही नमस्ते कर रहे हैं। वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे? इसीलिए बाबा कहते हैं ये प्रशंसा मान ये शान ये सब हमारा नहीं है, हमारे साथ बाबा हैं, ये बाबा के कारण। इसलिए हमें सदा कैसे रहना है, गीता में भी कहा ना, हे अर्जुन तुम मान अपमान निंदा स्तुति में भी कैसे रहो, समान रहो। तो जितना हम निरहंकारी रहते हैं उतना हमारे संकल्प नहीं चलेंगे, संकल्प से व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे, इससे हम अशरीरी का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने अंतिम समय तीन शब्द कहे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी। चेक करना है कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं है, अभिमान वाला रूठ जाएगा। अभिमान वालों को क्या होता है, दूसरे के अंदर की कमियां दिखाई पड़ती है, मैं ही सब कुछ नहीं, इसलिए निरहंकारी बनना है। और लास्ट की बातें, अगर हमें अशरीरी का अनुभव करना है, पहली बात कौन सी बताई, जीवन में आने वाली समस्या का क्या करो, समाधान करो, कारणों का निवारण करो। ये कारण कारण नहीं लगाना है, मुझे झुकना है। दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, दूसरों से सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो। इसलिए कारण शब्द खत्म। दूसरा, योग के ऊपर अटेंशन, विधि पूर्वक योग करना। तीसरी बात बताइए, निरहंकारी स्थिति। लास्ट की चौथी बात है, अगर हमें अशरीरी का अनुभव करना है, विधेयी अवस्था में रहना है, उसके लिए पुराने संस्कार, बाबा ने कहा ना पुराने संस्कारी देह भान को जागृत करते हैं। हमारे अंदर पुराने संस्कारों के जर्म से, इसलिए पुराने संस्कारों को हमें क्या करना है, परिवर्तन। और उसके लिए ज्वाला स्वरूप योग, जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे पुराने संस्कारों के अंश खत्म होंगे। जब चाहते नहीं कि देह भान में आए, लेकिन पुराने संस्कार के जर्म सोने से उसको कोई वायुमंडल मिल जाता है, वातावरण मिल जाता है, पुराने संस्कार जागृत होते हैं। इसलिए उस पुराने संस्कार मेरे अंदर ना आए, उसके लिए हमें सुख लेना है। जब योग से सुख लेंगे, भले साधन यूज करो, उस साधन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ज्वाला स्वरूप योग से हमें पुराने संस्कारों को क्या करना है, परिवर्तन करना है। इसलिए इसे तो बहुत सारी बातें, अगर ये तीन चार बातें भी हम याद रखेंगे, जो मैंने कहा, मैंने भी इस बातों से अपनी आत्मिक स्थिति को बनाने का पुरुषार्थ किया। और जब अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे, आप सेवा तो आपके पीछे पड़ेगी, सेवा तो बहुत आपको मिलेगी। अपनी स्थिति बनाने से उमंग उत्साह रहेगा, सेवा में भी आप सदा दौड़ते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे। इसलिए इस अशरीरी स्थिति का अनुभव करके, स्वयं देह भान से मुक्त होकर के, भगवान ने सभी को क्या करो, मुक्त करो। क्योंकि आगे चल करके आपके सबके सामने लाइन लगेगी भक्तों की। इसलिए चलते फिरते हमें क्या करना है, इस आत्मिक स्थिति से सबको सुख और शांति की अनुभूति करानी है। इसलिए अशरीरी स्थिति का अनुभव करते रहना है, और सदा अपने आप को भी मुक्त रखना है, औरों को भी मुक्त बनाने की सेवा करनी है। ठीक है, ओम शांति।